surgió me.
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
शुक्रिया।
प्रोफेसर सचदेवा, साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोड्यूलिडेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ 2027 तक की शुरुआत तक अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, साइप्रस इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से तब जबकि वर्तमान में वह यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्ष है।
ये उनकी जो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ईयू प्रेसिडेंसी की यूरोपियन काउंसिल की वो 6 मंथ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, उसमें हर 6-6 महीने के बाद वहां पे जो है नया कंट्री जो है उसका प्रेसिडेंसी कंट्री बनता है। तो अभी इस साल के पहले 6 महीने की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास है, तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी मीटिंग्स वहां पे यूरोपीय संघ की जो होती है वहां पे काउंसिल पे, उनकी जो अध्यक्षता है उन मीटिंग्स की सब वो प्रेसिडेंसी कंट्री करता है, और उसका हर प्रेसिडेंसी कंट्री अपना एक एजेंडा लेके आता है कि मैं इस 6 महीने के अंदर ये चीजें जो है वो कोशिश करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक। तो वैसे तो ये रूटीन मैटर है, हर 6-6 महीने में कंट्री जैसे बदलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे संबंध हैं वो यूरोपीय संघ के साथ बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं पिछले कई सालों में। और अभी हमने देखा था जब जनवरी में भारत में यूरोपीय संघ और भारत की जो समिट मीटिंग हुई थी, उसके बाद से नया रोडमैप हमारा 2030 का उनके साथ उसको अपनाया गया है। और जैसा आपने कहा कि मुक्त व्यापार जो बात है ट्रेड एग्रीमेंट की, उसके नेगोशिएशन कम्प्लीट हो गए हैं, फॉर्मेलिटीज वहां पे चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी है उसको क्रियान्वित किया जाए, और उसमें जो भी प्रेसिडेंसी कंट्री है निश्चित तौर से उनका एक रोल रहता है, उसको थोड़ा आगे पुश जल्दी कर सकते हैं, तो उसमें साइप्रस भी अपनी भूमिका उसमें अदा कर सकता है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री का भी दौरा भी था यूरोप का, इसमें 4 यूरोपीय देशों में गए थे, उसमें भी अपने संबंध है, द्विपक्षीय संबंध है उन देशों के साथ आगे बढ़ाए हैं, और उसी कड़ी में मुझे लगता है ये जो अभी साइप्रस के राष्ट्रपति डोलिडिस का यहाँ पे जो दौरा है उसी की श्रृंखला में मुझे लगता है कि एक एक देश के साथ हम बिल्कुल अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री भी साइप्रस का दौरा करके 2025 में वहां पे आए थे, तो संबंध काफी करीब हुए हैं पिछले कुछ सालों में।
प्रोफेसर सचदेवा, इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछूं, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत साइप्रस की मित्रता और भारत ईयू एफटीए में साइप्रस की भूमिका के बारे में क्या कहा।
भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है।
प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस संयुक्त प्रेस वक्तव्य में एक और घोषणा की कि भारत और साइप्रस अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया है, और अगले 5 वर्षों में साइप्रस में भारत में होने वाले निवेश को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
फ्रेंड, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं, और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
तो तो प्रोफेसर सचदेवा, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना और हम भी बात कर रहे थे कि दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है उसको दुगना करने का एक निर्णय लिया है और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर एलिवेट करने का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, इन दोनों ही फैसलों पर आप क्या सोचते हैं?
इनफैक्ट ये एक काफी सोची समझी नीति मुझे लगता है भारत की है यूरोप के प्रति, जो काफी अभी बिल्कुल उभर कर आ रही है। आप जानते हैं कि हमारा यूरोपीय संघ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से है और पहले हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ बड़े देशों के साथ होती थी, जैसे फ्रांस के साथ थी, जर्मनी के साथ थी और यूके जब उनका हिस्सा होता तो उनके साथ थी। वो साझेदारी अभी भी है। पिछले कुछ सालों में हमने कई और देशों के साथ पार्टनरशिप किया स्ट्रेटेजिक, जैसे इटली के साथ किया, ग्रीस के साथ किया, पोलैंड के साथ किया और अभी जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो दो और पार्टनरशिप्स को, नीदरलैंड्स को, स्वीडन को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। उसी कड़ी में अभी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइप्रस के साथ है उसको भी एलिवेट किया गया है और उसके साथ डिफेंस का एक नया रोड मैप भी इनके साथ तैयार किया गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर यह है कि कॉम्पिटेंसीज कुछ चीजों की जो है यूरोपीय संघ के पास है, बाकी चीजों की क्योंकि सब अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं तो उन सब चीजों की बात आप उस देश के साथ कर सकते हैं। तो हम यूरोपीय संघ के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारी साझेदारी है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट देश हमको लगता है उनके साथ हम अपने रिलेशंस को एलिवेट कर रहे हैं और जैसे इंडिया नॉर्डिक समिट में था तो हमने एक समूह के साथ भी वहां पे उनके साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। तो क्योंकि साइप्रस जो है हालांकि एक छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है, लेकिन भारत की दृष्टि में मुझे लगता है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री पिछले साल भी गए थे वहां पे और अभी वहां के राष्ट्रपति यहां पे हैं और इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया है, इसका मतलब यह है कि हम सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जगह पे स्थित हैं और मेडिटेरेनियन के अंदर इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है और जिस तरीके से निवेश की बात है क्योंकि वहां के जो नियम कायदे कानून है मॉरिशस की तरह काफी खुले हैं, उसकी वजह से वहां से निवेश चाहे वो साइप्रस का हो चाहे दूसरे देशों के व्यापारी हो वो भी साइप्रस के थ्रू काफी निवेश दूसरे देशों में करते हैं। तो उसी का कारण है कि काफी निवेश वहां से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हमारे टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से साइप्रस है और अगर उनके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं और एक पूरा अच्छा प्लान बनता है तो निश्चित तौर से वहां से निवेश और भारत की तरफ अधिक आ सकता है और साइप्रस जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक गलियारा की हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए भी जो साइप्रस है काफी भूमिका अदा कर सकता है भारत और यूरोप को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां पे मेडिटेरेनियन के अंदर है और अफ्रीका के देश भी वहां से बहुत दूर नहीं है और पश्चिम एशिया के देश भी वहां से पास हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सोची समझी नीति के मुताबिक भारत ने इनके साथ अपनी रिलेशंस को अपग्रेड किया है।
इससे पहले की बातचीत को आगे बढ़ाएं, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के बारे में क्या कहा।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
तो प्रोफेसर सचदेव, जैसे भी हमने सुना प्रधानमंत्री को कि रक्षा और सुरक्षा दोनों की जो उन्होंने बात कही, डिफेंस कोऑपरेशन की दोनों देशों के बीच में बात कही, तो आज दोनों देशों के बीच में एक काउंटर टेररिज्म पर भी एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के लिए भी एक एमओयू साइन हुआ है, साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी एक रोडमैप तैयार किया है 2026 से 2031 तक के बीच में। तो भारत साइप्रस संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में रक्षा और समुद्री सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
एक तो ये है क्योंकि पूरी दुनिया का जैसा आप जानते हैं वातावरण काफी तनावपूर्ण है और क्योंकि साइप्रस का अपना एक तनावपूर्ण हिस्ट्री रही है और तीसरी बात यह है क्योंकि जैसे यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है और उसके चलते यूरोप के जितने भी देश हैं और साइप्रस भी उसका हिस्सा है तो उसमें पूरे का पूरा आप देखते हैं कि जो सुरक्षा का जो प्रबंधन है पूरे यूरोप के अंदर उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ और काफी जो नेटो के देश हैं यूरोप के अंदर उनकी भी, उसमें भी एक तरीके का तनाव, एक तरीके की थोड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं। तो उसमें पूरे यूरोप के अंदर एक तो ये है कि अपनी सुरक्षा को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ऑटोनॉमी को, उसको बढ़ाने के लिए सुरक्षा को और खासतौर से डिफेंस जो इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी कुछ महीने पहले वहां पे एक जो व्हाइट पेपर पूरा यूरोपीय संघ ने जो निकाला था अपने डिफेंस के लिए, उसमें यह कहा गया था कि आने वाले सालों में 2030 तक यूरोप के पूरे देश मिलकर 800-900 बिलियन यूरो और ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे प्रधानमंत्री पहले भी गए थे वहां पे चार देशों में जैसे मैंने कहा, और जर्मनी और फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे सुरक्षा संबंध बढ़े हैं पहले डिफेंस के, तो उसमें जो पूरी नई पूरा डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे जो पूरा बढ़ रहा है, काफी उसके अंदर निवेश हो रहा है। और भारत की हमारी जो है अपनी एम्बिशन है कि एक मेक इन इंडिया के अंदर हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को हम मजबूत कर रहे हैं, और काफी अभी पिछले कुछ सालों में निर्यात भी हमारा डिफेंस से हुआ है। तो ये पूरा एक प्लान है जिसके अंदर हम उसको साइप्रस को अलग करके भी देख सकते हैं और पूरे यूरोप के साथ जो है हमारा जो संबंध, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, उसी पूरे संबंध के अंदर व्यापार की बात, निवेश की बात, तकनीक की बात और ग्रीन ट्रांजिशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में अभी सुरक्षा और डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो मामला है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है। और ये जब हम देखते हैं कि जब साइप्रस के राष्ट्रपति भी यहां पे हैं, तो एक हमने पूरा रोड मैप पूरा डिफेंस कोऑपरेशन का वो साइप्रस और भारत के बीच में 5 साल के लिए वो भी एक पूरा तैयार किया है। और आतंकवाद के प्रति तो दोनों देशों की पहले से ही एक जैसी सोच रही है, और क्योंकि वो भी उससे जूझते रहे हैं पहले, तो इसलिए जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है उसका भी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भी और भारत के जो संबंध है यूरोपीय संघ के उसके अंदर भी इन दोनों के आने से काफी मजबूती मिलेगी। तो ओवरऑल संबंध है वो पूरा यूरोप के साथ हमारा संबंध है। जब वो 2004 में जब यूरोपीय संघ को साइप्रस ने ज्वाइन किया था तो वो एज ए डिवाइडेड साइप्रस वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वो जो है यूरो जोन का भी हिस्सा बन गए हैं। तो जो यूरोपीय संघ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं, क्योंकि ये भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं,
बिल्कुल,
तो उनकी चिंताएं भारत समझता है कि हमारी चिंताएं हैं, और क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है उसका फायदा भारत भी लेना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और कनेक्टिविटी और ये सब बातें को आगे बढ़ाने के लिए इसको पूरी रणनीतिक साझेदारी हमारी उनके साथ बन रही है।
एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर सचदेव, भारतीय बिजनेसेस हैं जो यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो ऑफकोर्स हम बात कर रहे हैं कि साइप्रस एक लॉन्च पैड के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा, बट इसके अलावा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक वाइडर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों के लिए एक आधार के रूप में और लॉजिस्टिक हब के रूप में साइप्रस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है भारतीय बिजनेसेस के लिए?
नहीं, भारत के बिजनेस देखिए ऑलरेडी वहां पे काफी हमारा जैसे निवेश वहां से आ रहा है, काफी भारतीय वहां पे बसे भी हुए हैं, और अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि हम जो मोबिलिटी और माइग्रेशन के एग्रीमेंट है और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बारे में भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ समझौते जल्दी होने की उम्मीद है। उसका मतलब ये है कि दोनों सरकारें ये कोशिश करेंगी कि जो भारतीय वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं, उनके लिए भी काफी सुविधा हो जाए कि वो आराम से वहां पे जा पाएं और अपने व्यापार को वहां पे स्थापित कर पाएं और दोनों देशों के बीच में संबंध वो बढ़ाएं। और इसीलिए क्योंकि पूरे जो जैसे आपने कहा कि जो उनकी भौगोलिक जो स्थिति है, हालांकि हर देश जैसे यूरोप में भी होता है अपने आप को कहता है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, तो आप उसको एज ए गेटवे आप यूरोप के मान सकते हैं। चाहे आप इटली में गए थे तो इटली के प्रधानमंत्री वो कहती थी कि आप यहाँ से इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन जो सी है दोनों का मिलाप होता है, तो इंडो मेडिटेरेनियन जो बनता है। इसी तरीके से दूसरे देश भी कहते हैं, फ्रांस की भी, सब देशों की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन इसकी एक क्योंकि खास भूमिका है यूरोप के अंदर, और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त इस पूरे इलाके में है, उसके अंदर मुझे लगता है भारत के लिए उसकी जो स्थिति है उसके साथ अच्छे संबंध बनाना, अच्छे संबंध हमारे हैं उनके साथ, लेकिन उन संबंधों को और आगे इंस्टीट्यूशनलाइज करना और उनको प्रगाढ़ बना के उसको आगे बढ़े, तो उसमें दोनों देशों के लोगों का फायदा होगा, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, और वैसे भी यूरोपीय संघ के अंदर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छा मुझे लगता है मौका मिलेगा।
प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में